यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणं। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अपनी प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। अभी हमारे श्रीमान भक्ति वेदांत अरण्य महाराज जी ने श्रीमद् भागवत की महिमा का कुछ श्लोक आप लोगों को सुनाए हैं। मैं इसके बाद में थोड़ी सी कथा आरंभ करता हूं। यहां पर राधा कृष्ण जी श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान इधर में लक्ष्मी नारायण जी ये सब विराजमान है। क्रम से इनके संपर्क में भी थोड़ा सा मैं क्रमशः बतलाऊंगा। आज मैं कृष्ण के संबंध में ही राधा कृष्ण के संबंध में बहुत थोड़ा सा आप लोगों के सामने उपस्थित करता हूं। व्हाट अरण्य महाराज हैज टोल्ड अबाउट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। ओ दिस कैन बी डन this glory even in thousand and thousand years, no end of the glorification of Srimad Bhagavatam. Brahma with four mouths and ever shesh with legs and legs mouth, we cannot entirely tell all these things. To main Hindi bhasha mein यहाँ पर मुझको सुजोग मिलता है बोलने का, इसलिए हिंदी भाषा में ही बोलता हूँ। पीछे में जो चीज होगी वो अरण्य महाराज कैन टेल अफ्टरवर्ड और पुंडरीक प्रभु और माधव महाराज। तो भगवान की महिमा बहुत अपार है, इसका वर्णन करना सहज नहीं है। कृष्ण अपने मुख से और राम भी अपने मुख से अपने नामों की महिमा नहीं वर्णन कर सकते। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की रामचंद्र जी के लीला के पहले ही उन्होंने कर डाली, उन्होंने शब्द देखा और कर डाली। उसमें 100,000 श्लोक थे और ऐसा सुंदर माधुर्यपूर्ण कि सुनने से ही मुक्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, गोलोक वैकुंठ मिल जाए। इसलिए मनुष्य देवता और असुर तीनों आपस में लड़ने लगे, इसको मैं लूंगा, उसको मैं लूंगा, इसको मैं लूंगा। जब तीनों में लड़ाई झगड़ा बखेड़ा होने लग गया तो उस समय में हठात शंकर जी उपस्थित हो गए। ये जो आपके सामने ये हैं भोलेनाथ, वहां पर उपस्थित हो गए। बोले भाई झगड़ने की कोई बात नहीं है, किस लिए झगड़ते हो? तो ये पूरी ये वाल्मीकि रामायण हमको चाहिए, वो कानेलगाजी हमको चाहिए, वो कानेलगाजी हमको चाहिए। ठीक है, तुम लोग बैठ जाओ, मैं इसका अच्छी तरह से विभाग करके तीन भाग करके आप लोगों को मैं दे देता हूं। लड़ाई झगड़ा की कोई जरूरत नहीं है। 100,000 श्लोक थे, तीन भाग उसका किया, 33,000 हो गया। ये 33,000 श्लोकों को उनको दे दिया। अब रह गया 1,000। 1,000 को बांटना है तो इसको भी 399 इनको भी दे दिया। 333 हो गया। अब ये श्लोक बच रहा। एक श्लोक में चार चरण होते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्त, ये चार होते हैं। उन्होंने एक एक चरण भी दे दिए। अब रह गया एक चरण, अब उसके लिए भी लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो उन्होंने कहा जो ठीक है, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, इसलिए इसको भी आप लोगों को विभाग कर देता हूं। तो उन्होंने दो दो अक्षर दे दिए, तो 2 × 3 = 6 हो गया। अब रह गए कितने अक्षर, 2। कहे ये मैं नहीं दूंगा, बहुत मैंने परिश्रम किया, ये दूसरों को नहीं। ये क्या है, यही राम, ये 2 अक्षर हैं, या कृष्ण 2 अक्षर है। और सब वेदों का, शास्त्रों का, रामायण का, पुराण का, भागवत का यही सार है। इसलिए भगवान नाम ये कर लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसका सब कुछ पढ़ना हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सारी उपासनाएं हो गई, दान व्रत होम साध्याय संयम सब कुछ हो गया, घर बैठे बैठे ही आराम से ही सब कुछ हो जाएगा, और अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, इतनी शक्ति है। क्यों, राम जी ने या कृष्ण ने सारी अपनी शक्तियां इस नामों में भर दी है, अपनी कृपा शक्ति भी इसमें भर दी है। कृष्ण हैज इन्वेस्टेड हिज ऑल पावर्स एपुलेंस एंड ऑल मर्सी इन टू नेम्स एवरीथिंग इवन इन महामंत्र वी सी 3 नेम्स हरे कृष्ण राम, दे आर नॉट डिफरेंट। जो समस्त जगत सबको आकर्षण करता है वही कृष्ण है, जो सबके दिल को हरण कर लेता है, सब विपत्तियों को हरण कर लेता है, सब कठिनाइयों को, आने वाली विपत्तियों को हरण कर लेता है, उसका नाम है हरि। वो हरि कौन है, कृष्ण ही है। और सब जगत में रमण करते हैं इसलिए वही राम है, राधा रमण, अलग अलग नहीं है। ये राम कौन है, राधा रमण। यदि कहो जो ये सीता जी के हृदय में रमण करने वाले राम है, हाँ ठीक है पार्टली, क्यों वो राम जो है सीताराम वाले, वो राधा जी के और गोपियों के हृदय में रमण नहीं कर सकते, इसको भी समझ लीजिए। किंतु ये जो राम है राधा रमण, ये सीता जी के हृदय में, लक्ष्मी जी के हृदय में, सबके हृदय में, पार्वती जी के हृदय में, सब में रमण कर सकते हैं, ये विशेषता है। इसलिए ये राम नाम है, ये कृष्ण के लिए, ये राधा रमण, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इसलिए इनमें सारी शक्तियां भर दी हैं उन्होंने। इसलिए श्रीमद् भागवत में, गीता में, भागवत में सब जगह नाम की इतनी महिमा है। यहां तक ये महिमा है कि एक समय की बात है, लंका में जाने के लिए पुल बंद रहा था और रामचंद्र जी के आदेश से बंदर भालू हिमालय के पहाड़ों से, विंध्याचल के पहाड़ों से, दक्ष पूर्वी और पश्चिमी ये पहाड़ियों से पत्थर के बड़े बड़े चट्टाने और पहाड़ के पहाड़ उखाड़ करके ला रहे थे। और नल नील बस राम नाम कहा, उसको हाथों में लिया, उस पर रख दिया, वो पैर तैरने लग गया, उनके स्पर्श से, नाम के श्रवण से ही तैरने लग गया। नाम की ये महिमा। रामचंद्र जी बैठे हुए देख रहे हैं, जब पुल करीब करीब पूरा होने जा रहा है, तो रामचंद्र जी ने सोचा जी भाई देखो तो नल नील हमारा नाम लेते हैं और पत्थरों को स्पर्श करते हैं दे देते हैं तो वो तैरने लग जाता है, मैं भी एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के डालूं तो ये तैरता है कि डूब जाता है। वो छिप करके यहां पुल बन रहा था थोड़ा सा झाड़ियों में चले गए और वहीं से एक पत्थर उठाया और समुद्र में दिया, छप सा आवाज हुआ और वो पानी में डूब गया। चिंता करने लगे, इतने में प्यारे हनुमान जी वहां पर पहुंचे। अरे प्रभु जी आप एकांत में क्या कर रहे हैं, तो तुम यहां पर कैसे आया गए, तुम्हारी क्या जरूरत? तो मुझको जरूरत रहती है, आप यहां पर क्यों छिप करके आए और क्या किया? जैसा बतला देना ही उचित है, ये मानेगा नहीं। तो उन्होंने कह दिया देखो भाई ये मैं परीक्षा कर रहा था, ये तुम लोग तो इतने पत्थर लाते हो और नल नील इसको हाथ में लेते हैं और स्पर्श करके पानी में छोड़ देते हैं और वो पानी में तैरने लग जाता है, और ये मेरा नाम राम है तो मैं खुद ही देख लूं परीक्षा करके, जो मैं पत्थर लेकर के उसमें डालता हूं तो वो तैरता है या क्या होता है। तो देखा जैसे पानी में छप शब्द हुआ और वो उसमें डूब गया। तो भाई देखो ना मैंने तो दिया तो वो डूब गया कैसे? और मान्य जी ने कहा जैसे प्रभु जी ये बात ठीक है, आपकी नाम की महिमा इतनी है, किंतु आप जिसको लेकर के और छोड़ दोगे परित्याग कर दोगे वो तो डूबेगा ही संसार में, वो तो बच नहीं सकता, इसलिए आप किसी को मत छोड़िए, आप मत डुबाइए। आप छोड़ते हैं माने ये होता, वो तो वहां तो ग्रहण होता है, वो ग्रहण कर रहे हैं और स्पर्श करके दे देते हैं तरने, और आप उसको फेंक देते हैं तो इसका मतलब वो आप उनका त्याग करते हैं। तो आप यदि उनका त्याग कर देंगे तो उनका भला कैसे होगा? नहीं हो सकता है। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होकर के आए, ऐसा ये नाम है, इसकी महिमा शास्त्रों में श्रीमद भागवत संपूर्ण करके और अंत में नाम संकीर्तनम जस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामोह। मैं उस हरि को प्रणाम करता हूं जिसके प्रणाम करने से सारे दुख संसार के दूर हो जाते हैं और प्रेममयी भक्ति होती है, गोलोक वैकुंठ में सहज ही वास हो जाता है। वो आदमी दुर्भागा है जो ऐसे नाम के प्रति जिनका आदर नहीं है, उनको मनुष्यों में गधा कहा गया, कल बतलाया था, ऐसे नामों में जिनकी रुचि नहीं। दो हैव नो टेस्ट इन दीज नेम्स और दे आर हॉक्स एंड पिग्स एंड डॉग्स एंड कैट्स, इनमें जरूर होनी चाहिए रुचि। इसीलिए आई थॉट दैट ही हैज टोल्ड अबाउट व्यास एंड नारद, डायलॉग बिटवीन देम उन्होंने बतलाया होगा। अब यहीं से भागवत आरंभ करता हूं थोड़ा सा। व्यास जी साक्षात नारायण के अवतार हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। इन वेदों का विभाग करना, ब्रह्मसूत्र को लिखना, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखना और अंत में उनकी जैसा इन्होंने बतलाया गायत्री का भाष्य, वेदों का अर्थ, श्रीमद् भागवत का तात्पर्य, ये महाभारत है जिसमें गीता जैसा रत्न है, ये साधारण नहीं। जिस दिव्य ज्ञान को अर्जुन को जब उनको मोह उपस्थित हुआ तब कृष्ण ने सुनाया, ये जगत में सबसे प्रचलित पुस्तक ये गीता है। आज ऐसा कोई देश राष्ट्र भाषा नहीं है जहां पर कि ये गीता का प्रचलन नहीं है, लोग विभिन्न भाषाओं में इसको पाठ करते हैं। तो ये क्या कह रहा श्रीमद् भागवत में ये सब है। तो ये व्यास जी समस्त शास्त्रों का प्रणयन किया, महाभारत भी लिख डाला, वेदों का विभाग भी कर दिया, ब्रह्मसूत्र नामक एक ग्रंथ बनाया। जो इसका पाठ नहीं करेगा, जो इसकी व्याख्या लिखा नहीं, वो आचार्य भक्ति का आचार्य ही नहीं हो सकता। इसलिए सब लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। वो सब करने पर भी व्यास जी एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे और उसी समय में उनके गुरुदेव नारद जी पधारे। गंगा का सुंदर तट, पवित्र तट, और वहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। इतने में नारद जी वहां पर पधारे, नारद जी के चरणों की पूजा की, पैर धोया, अपने सिर पर छिड़का पानी, और नारद जी ने उनको देखा। नारद जी ने कहा, सब प्रकार से कल्याण है, देखता हूं कि तुम कुछ उदास है, प्रसन्न चित्त तुम्हारा नहीं है, चेहरा ये चेहरा शरीर का हृदय का दर्पण है, आप मुख के देखने से ही समझ सकेंगे ये आदमी दुखी है कि सुखी है। इसलिए नारद जी ने देखा ये कुछ चिंतित, उन्होंने व्यास जी से पूछा, आपने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सबको आपने बनाया, एकादशी इत्यादि उपवास, व्रत, बिना खाए हुए चार चार महीने, तपस्या कठोर, वर्णाश्रम धर्म का पालन, ये सब आपने किया, और जगत की शिक्षा के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन किया, गीता जैसे रत्न को आपने प्रकाशित किया, तो भी मालूम पड़ता है ये तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है, क्यों? व्यास जी बोले, यही तो समस्या है, मैंने सब कुछ किया, चित्त प्रसन्न नहीं है। यदि धर्म का आचरण करके किसी का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ तो धर्म का आचरण बेकार है, उसको छोड़ देना चाहिए। धर्म का गुण रहस्य सोचने के लिए अच्छे अच्छे जो भगवान के भक्त हैं, रियलाइज सोल हैं, जो संसार से विरक्त हो चुके हैं और भगवान की सेवा की अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति है, और हमारी समस्त शंकाओं को दूर कर सकते हैं, ऐसे गुरु के यहां पर पहुंचना चाहिए। रोगों को यह मालूम नहीं होता कि मुझे कौन सा रोग है, और डॉक्टर के पास में जाने से बैठते ही बतला देगा जो क्या रोग है। एक समय की बात है, कलकत्ते में बीसी रॉय थे, गांधी के एक अनुगत थे, वहां के चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, बड़े भारी चिकित्सक थे, बहुत उन्नत कोटि के। तो वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और दो व्यक्ति उनके पास में आए, एक रोगी आया और एक रोगी को दिखलाने के लिए जो व्यक्ति आया, दोनों आए। तो जो व्यक्ति दिखलाने के लिए आया वो बोलता है कि हमारे भाई को देखिए क्या रोग हो गया है, दिन पर दिन इसको ऐसे हो रहा है, अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा, आप परीक्षा करके, अब देख करके इसका ट्रीटमेंट कीजिए। तो उन्होंने कहा, ये रोगी कौन है, तुम रोगी है कि ये रोगी है? तो उसने कहा, जे ये रोगी है। उन्होंने कहा, जैसे वो रोगी नहीं है, तुम रोगी है। थोड़ी देर के बाद में देखा जी उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर गया। समझा? डॉक्टर ऐसे होते हैं, वैद्य लोग देख करके ही बतला देंगे ये क्या रोग है। तो ये रोग कौन, भाव रोग है, ये साधारण डॉक्टर बीसी टीसी का बाप भी नहीं बतला सकता, कोई भी नहीं बतला सकता। ये रोग भाव व्याधि के जो रोगी के जो डॉक्टर हैं वो बतला सकते हैं। कौन है? सुखदेव गोस्वामी है। निवृत्त तत्सई रूप गीयमानात बहु सदा सोत्री मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात विरज्येत बिना पशुगुना। ये तो भवरोग के वही डॉक्टर हैं, संसार से निवृत्त हैं, भगवान की कथाओं में सब समय प्रमत्त रहते हैं, संसार कहां चल रहा है नहीं चल रहा है उनको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे भगवान के प्रेम में संलग्न रहने वाले, उनके मुख से भगवान की कथाओं को नहीं सुनना वो आत्महत्या के समान है। वो दूसरों की भी हत्या करता है, अपने भी हत्या करता है। इन कथाओं का जो सेवन करता है सहज ही संसार से मुक्त होकर के भगवान के चरणों का प्रेम पा लेता है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि आपने चेस्टाइज किया उनको, नारद से चेस्टाइजेड टू हम व्यास, दो ही वज नारायण हिमसेल्फ। गुरु को अधिकार है शिष्य को शासन करने का, उसका शासन भी अमृत है। इसलिए व्यास को कह रहे तुमने क्या किया जो तुम्हारा अभी तक मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो यह धर्म कैसा रहा? तुमने गीता भागवत गीता और पुराण और ये सब तो लिख दिया, ये तुम्हारा करना धरना बेकार का है। इसलिए तुमने कुछ गलती की है, उसका सुधार करो। व्यास जी ने नतमस्तक होकर के कहा जी गुरु जी मैं नहीं समझ रहा हूं, आप कृपा करके हमको संशोधन कीजिए। तब उन्होंने कहा जी देखो तुमने वेद पुराणों का तो पढ़न किया, गीता में ये तुमने लिखा जे कृष्ण ही स्वयं भगवान है, नहीं तो तुमने ये लिखा कि जगत के उपास्य कृष्ण है किंतु कृष्ण की उपास्य भी गोपियां और यशोदा मैया नंद बाबा है। ये लिखा यशोदा मैया इस पर ब्रह्म जो कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड है, उसके कान को पकड़ करके ऐंठ देती हैं, मक्खन चोरी करने पर बेंत लेकर के कहती मारूं और वो रोते हैं, ओखल में उनको बांध देती है। ऐसा कभी देखा कभी लिखा है तुमने जे प्रेम के वो वशीभूत हो जाता है? लिखा है? मैंने नहीं लिखा, मैं तो ये जानता है नहीं, तो खाक पत्थर लिखा। क्या लिखा? क्या तुमने लिखा? ये जे ये कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ ब्रह्म हो करके और कहते हैं न पारे हम निर्बद्ध संयुजा, मैं इन गोपियों का ऋण कोटि कोटि जन्मों में नहीं चुका सकता, ये लिखा? नहीं तो लिखा, ये मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं? तो मैं जानता ही नहीं तो लिखूंगा क्या? सर्व स्वभाव से कह दिया मैं नहीं जानता था। गोपियों का ऋण क्यों नहीं चुका सकते कृष्ण? इसलिए कि और जो कोई कुछ मांगेगा उनको दे देंगे और गोपियां जो मांगेगी वो देंगे? नहीं दे सकते। गोपियां कहती हैं देखो हमने अपने पतियों को छोड़ दिया, अपनी संतानों को छोड़ दिया, लोक लज्जा को छोड़ दिया और संसार सबको छोड़ करके एक रूप से अपना तन मन वचन धन जो कुछ है आपके चरणों में सौंप दिया एकांतिक रूप से। आप ऐसा ही हमारे प्रति कीजिए तो कर सकते हैं कृष्ण? नहीं कर सकते। क्यों? करोड़ों उनके भक्त हैं यशोदा मैया नंद बाबा इत्यादि हैं और करोड़ों गोपियां हैं, करोड़ों भक्त हैं हनुमान जी इत्यादि, राम के भक्त इत्यादि सभी उन्हीं के ही हैं। आप लोग यदि भजन करते हैं तो आप लोग भी हैं, वो एक को भी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने प्रतिज्ञा की है जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथा, जो हमको जितने रूप में हमारा भजन करता है मैं भी उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूं। इसलिए कृष्ण यदि एक किसी को छोड़ करके संपूर्ण रूप से राधा जी के ही हो जाए तो बाकी सब ऋणी हो जाएंगे? नहीं कर सकते, ये उनके लिए संभव पर नहीं है जो वो कर दें। किसको छोड़ेंगे? किसी को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए किसी को नहीं छोड़ने की वजह से कहते हैं जी मैं नहीं ऐसा। और दूसरी बात एक और है, वो यदि जिद भी करें कृष्ण जी हमसे कुछ मांग लो तो एक चीज मांगेंगे, क्या? हम आपकी सेवा को चाहते हैं जिस सेवा करें, तो और भी ऋणी हो जाएंगे। If they want to have some boon, they will tell, but we want to serve you, please give your service. तब तो और भी ऋणी हो जाएंगे। इसलिए गोपियों की कोई भी इच्छा को वो पूर्ण नहीं कर सकते हैं कोटि कोटि जन्मों में, और इस विषय को स्वीकार करते हैं। तुमने लिखा, तुमने ये लिखा, ब्रह्म में ढूंढो, पुराणन वेदन, मैंने वेद और पुराण में ब्रह्म को खोजा, हमने बैकुंठ में खोजा, संतों के हृदय में सब जगह खोजा, ढूंढ ढूंढ करके हार गया, कहीं नहीं मिला। कहां मिला वो? गोपियों के चरणों को पलोट रहा है, कहां राधा? वृंदावन के कुंजों में। इसलिए ये सब लिखा तो ये सब तो नहीं लिखा, तो फिर इस सबको अनुभव करके लिखो। व्यास जी ने कहा जैसे आप कृपा करके हमको बतलाइए कैसे करूं। अनकंडीशनली सरेंडर करो, संपूर्ण रूप से सरेंडर कर दो हमको, और करके अर्थ फिर उनका ध्यान करो। अब देखो जैसे तुम्हारे हृदय में आविर्भूत हो जाएंगे, उनकी सारी लीलाएं आ जाएंगी। देखो भारतवर्ष में अभी कुछ दिन पहले, करीब के 3-4 हजार वर्ष पहले बुद्ध देव हुए हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचलन किया। क्यों किया, कैसे? जहां पर हमारे भगवत बुद्ध का जन्म है गया में, वहीं पर वो पधारे कलयुग वाले, और वहां पधार करके सोचा, क्षत्रिय राजा थे के लड़के राजकुमार सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम, उन्होंने कहा जब मैं समाधि के द्वारा देखूं तो ये जगत कहां से आया, और सचमुच में इस जगत को बनाने वाला कोई ब्रह्म अथवा भगवान या ईश्वर या परमात्मा है कि नहीं, और ये जगत क्या है, गुरु तो कोई था नहीं। इसलिए उन्होंने वो बातचीत छोड़ करके मौन हो करके चुपचाप बैठ गए, सोचने लगे यदि कुछ होगा तो जरूर हमारे दिमाग में आ जाएगा, ये इसी को तो समाधि कहते हैं। कितने वर्षों तक उन्होंने किया, देखा जे कुछ नहीं मिला। अंत में उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जगत शून्य है, शून्य से पैदा हुआ, वेद पुराण ये सब बेकार के बकवास हैं, यथार्थ में भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, ये मनुष्यों की कल्पना ऐसा कर लेते हैं, यदि होता तो मैं अपने कुछ अनुभव करता, किंतु अनुभव तो हुआ नहीं। और दूसरी तरफ में ये व्यास जी ने क्या देखा, कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके बचपन से लीला लेकर के और द्वारका की सारी लीलाओं को देखा, जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने इस नारद के उपदेश से पहले देख करके रामायण लिखा था, और ऐसे ही देख करके उन्होंने समाधि में इस श्रीमद् भागवत की रचना की। इसलिए बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, बिना गुरु के सदुपदेश से, उसके दिए हुए मंत्र के बिना, शक्ति रहित मंत्र के जपने से धन धान्य तो कुछ मिल सकता है, लोक वृंदावन में कृष्ण की प्रेममयी सेवा नहीं मिल सकती। वी कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। इसलिए व्यास जी ने दिखलाया नारद जी की कृपा से, व्यास जी नारायण है तो भी नहीं संभव था। व्यास जी भगवान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ अभाव है, जो राधिका इत्यादि में है वो नहीं है उनमें। जैसे देखिए पुरुषों का ऐसा स्वभाव है कि वो छोटा सा बेटा भी होगा बच्चा भी होगा तो बहन जरा पानी लाना, तो मैया जरा पानी लाना, तो सबसे वो ऑर्डर करेगा, फरमाइश करेगा। बूढ़ा हो जाएगा तभी कहेगा अपनी बेटी को मां को और सबको किसी को कहे जरा पानी लाना, तो अपने पानी नहीं लेगा, ये स्वभाव है। और लेडीजों का महिलाओं का ये स्वभाव है, वो सब समय सेवामयी भावना से बाप को भी पानी देंगी, मैया को भी, छोटा यदि बेटा होगा तो भी, सब प्रकार से सेवा करती हैं। तो ये कृष्ण में सबकी सेवा को ग्रहण करते हैं, कैसे सेवा की जाती है ये नहीं जानते, ये कमी है उनमें। ये कौन करता है? राधा जी और गोपियां। कैसे कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, हाउ वी कैन प्लीज कृष्ण बाई व्हाट सर्विस, हु नोज ऑल द गोपीज समथिंग, और यशोदा मदर नंद बाबा दे नो समथिंग, फ्रेंड्स आर ऑल्सो नो बट नॉट फुल्ली फुल्ली श्रीमती राधिका अलोन ही नोज हाउ टू प्लीज कृष्ण. सो कृष्ण वॉन्ट दिस मोड दैट दे शुड कम टू मी एंड इट मे कम एनी हाउ बाय द हेल्प ऑफ राधिका अदर दैन नेवर. सो ही टूक आर ही स्टोलन अवे द मूड ऑफ राधिका एंड beauty of her golden Radhika, and he became Sri Sachinandan Gaudari. बहुत सी ये सब भी विशेष बातें हैं, इसलिए बिना उनकी कृपा के, उन गोपियों के कृपा, ब्रजवासियों के कृपा के बिना भक्ति शुद्ध रूप में नहीं होगी, केवल कृष्ण की उपासना करने से नहीं, कृष्ण की उपासना से नहीं होगी. इसलिए ये भक्ति कौन है, राधिका जी का एक भाव है भक्ति. उस राधिका जी के बिना कृपा के, उनकी सहेलियों के बिना कृपा के, ये सेवामयी भावना जो कृष्ण को आत्मसात कर ले, उनको भी कंट्रोल कर ले, ऐसा संभव नहीं है. इसलिए यदि भगवान को पाना है तो इन गोपियों का भावना चाहिए. इसलिए व्यास जी ने ये सब अनुभव किए, और अनुभव करके जस्या वैश्रूयमाण कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्ये पुंसक शोक मोह भया, सुन करके उन्होंने भागवत की रचना की. रचना माने क्या, जैसा उन्होंने देखा था उन्हीं को वहां पर लिपिबद्ध कर दिया. ये भागवत नित्य है, गीता का ज्ञान ये नित्य है. कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया आज से कुछ 5000 वर्ष पहले, ये बात नहीं, इसके पहले करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को यही ज्ञान दिया था, और उसके पहले और किसी को दिया था. इसलिए ज्ञान जो है, भक्ति है, ये नित्य है, अजर अमर. भागवत भी नित्य है, उसका अक्षरात्मक रूप में, अक्षर के रूप में व्यास जी ने लिखा केवल, किंतु भागवत नित्य है, गीता नित्य है, ज्ञान नित्य है, भक्ति नित्य है. इस चीज को समझना चाहिए. व्यास जी ने कोई नई नई चीज लिखी जो पहले नहीं थी, अक्षर के रूप में लिखा. पहले से श्रुति सुना जाता था, जब आदमी इसके अयोग्य हो गया सुन करके याद नहीं होता. जैसे मैंने कहा, जैसे एक आदमी कहा, जैसे देखो त्रिविक्रम महाराज जी को ये चीज दे आओ. क्या कहा, क्या नाम, त्रिविक्रम, तो उसने त्रि लिखा. त्रि लिख करके फिर पूछता है, जैसे और क्या कहे, जरा फिर से बोलिए. तो अरे त्रिविक्रम, तो त्रि बी लिख करके फिर पूछता जी और क्या, तो फिर क्रम बतलाते हैं. जहां पर फोन रहता वहां पर सब समय कागज रखते हैं, किस लिए, जो जो कहेगा उसको हम नोट करें, याद ही नहीं रहे. अरे याद रहा कहां से, ब्रह्मचर्य तो है नहीं, खाने पीने की चीजें सब गंदी हो रही हैं, सब जगह वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सब जगह तो ये सब चीजें हैं, तरकारी और सब्जियों और चावल के और गेहूं के अंदर में भी पॉल्यूशन ढुका हुआ है, शुद्ध चीजें नहीं है. पहले एक बिंद घी आग में देने से उसका सुगंध चारों तरफ फैल जाता है, एक मन भी आज घी डालने में वो सुगंध कहां, वो सब चीजें नहीं रही. लोगों के दिमाग इतने हो गए हैं कि उनको याद चीज नहीं रहती, कोई भगवान के नाम की भी याद नहीं रहती, और किसी चीज की भी याद नहीं रहती है, स्मृति शक्ति चौपट हो गई. इसलिए उन्होंने अक्षरात्मक रूप देकर के गीता भागवत इत्यादि को लिखा हमारे कल्याण के लिए. ये पीछे लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, ये कैसी लीलाएं हैं, बड़ी भारी पावरफुल है, बड़ी शक्तिशाली, अद्भुत है. इसका मैं एक उदाहरण देकर के आपको सुनाता हूं. जैसे उनका इन्होंने वर्णन किया, एक कीर्तन जय गोविंद, जय जय गोपाल, राधे जय जय माधव दैत्य. इतनी सुंदर होती हैं, पावरफुल होती हैं, जिसका वर्णन अभी हमारे अरण्य महाराज जी ने थोड़ा सा बतलाया कि भक्तों के हृदय में प्रवेश करके कृष्ण कथाओं के रूप में उसके हृदय की सब मालिनता को दूर कर देते हैं और बंधु की तरफ में बैठ जाते हैं और फिर वहां से निकलते नहीं, फिर कभी नहीं निकलेंगे। तिरछे हैं, टेढ़े हैं और भीतर में टेढ़े रूप में चले जा करके फिर नहीं निकलेंगे। एक समय की बात है, एक कुंजड़िन थी। कुंजड़िन माने फल को बेचने वाली, मथुरा में रहती थी। सुनी कि नंद बाबा को एक सुंदर लाला हुआ है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मधुर है। वो मुस्कुराता है तो जगत उस पर न्योछावर अपने को कर देता है। बहुत ही अद्भुत अलबेला है, उसको दर्शन करना चाहिए। वो रोज टोकरी में फलों को भर करके और गोकुल में जाती और फेरा लगाती। क्या लगाती? फल लो, फल लो, फल लो। बच्चे सुन करके मचल जाते हैं और भी मैया को और दूसरों को कहते हैं, मैया चढ़ हमारे लिए फल ले। इसलिए वो गोकुल में घूम रही। एक दिन, दो दिन फल लो करती रही। कृष्ण का दर्शन इतना सहज नहीं है जितना हम समझते हैं, बहुत कठिन है। लाखों लाखों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं होता। हम इसका प्रोसेस पीछे बतलाएंगे जे कैसे होता है। तो वो फल बेचने वाली फल लो करके दो तीन दिन हार गई, चली गई। आज उसने प्रतिज्ञा की, आज बिना देखे हुए दर्शन करने हुए मैं नहीं लौटूंगी। अच्छे अच्छे आम, अमरूद, केले इत्यादि लेकर के वहां पर गई और उनके नंद भवन के चारों तरफ में फल लो लेकर के कहते हुए इतनी तन्मय हो गई कि फल लो कहना भूल गई। दामोदर लो, गोविंद लो, माधव लो, दामोदर लो, इस प्रकार से तन्मय होकर के कहने। हाथ उसका अपने आप छूट गया, अभ्यास पश्चात टोकरी उसके सिर पर ही पड़ी रही और इस प्रकार से बोल, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो, गोविंद कन में हो गई, भूल गई मैं कहां हूं, कौन हूं, और गोविंद नाम में तन्मय हो गई। आराधना करो, तपस्या करो, कृष्ण नहीं आएंगे, किंतु हृदय से उनके मधुर नामों का स्मरण और कीर्तन करने से कृष्ण जहां भी रहेंगे वहां से दौड़े आ जाएंगे, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। परीक्षा करके देख लीजिए कुछ दिन, हृदय से संकीर्तन करते हुए और देखो कृष्ण आते हैं कि नहीं। वो जरूर आएंगे, किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुंजड़िन, कुंजड़िन हम लोगों के भारतीय भाषा में कहते हैं फल बेचने वाली, तन्मय होकर के करनी। कृष्ण मैया की गोदी में दूध पी रहे थे, बस वहां से छोड़ करके निकले और वहीं पर गेहूं की राशि रखी हुई थी, गेहूं को अपनी छोटी सी हथेली में गेहूं को उठा लिया। बाकी सब तो गिर पड़ा, किंतु यहीं पर थोड़ा सा दो एक दाने गेहूं के उसमें रह गए और उसको लेकर के नंगे, अभी बहुत छोटे से शिशु अभी चलना सीख रहे हैं, टलते पलते और कुंजड़ी की तरफ में लोभ से, फल के लोभ से, फल दो इस प्रकार से कहते हुए बढ़े, आगे बढ़ गए। और जो बस दो ही तीन उसमें लगे हैं गेहूं के अन्न दाने और कुंजड़िन के पास में पहुंच गए और पहुंच करके उसकी टोकरी में काजे लो फल दो। वो कुंजड़िन उनको, फ्रूट सेलर उनको देख करके एकदम तन्मय हो गई। इतना सुंदर, इतना रूप, विशेष करके अभी नंगे है ना, मैया छोटी सी सोने की करधनी पहना दी है, अद्भुत सुंदर। मोर की पंख, मोर का पंख यहाँ पर लगा रखा है, सुंदर घुघराले केश उनके हैं, कमल जैसे नेत्र उनके सुंदर है और पीतांबर भी उनको दे रखा है। अद्भुत रूप देख करके वो बस ललचाई दृष्टि से उनके तरफ में देखती रही और देखती ही रह गई। थोड़ी देर के बाद में होश आया, देखा जे ये बच्चा हमारे सामने नंदलाला खड़ा है। उसने एक शर्त लगाई, बेटे मैं फल दूंगी, देखो ना ये फल भरी टोकरी है, बड़े बड़े रसीले आम अमरूद और केले इत्यादि है, अंगूर है, दूंगी, किंतु एक बार तुझे मुझे मैया कह दे, मैया अम्मा या मैया कह दे, और फिर हमारी गोदी में बैठ जाओ, गोदी में बैठ करके कहो, तब दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। कृष्ण ने देखा इधर अभी छोटे से बच्चे, एक डेढ़ वर्ष के या दो वर्ष के होंगे, इधर देखा जो कोई देख रहा है कि नहीं, इधर देखा, देखेंगे तो बड़ी लज्जा की बात है, ये कुंजनी की गोदी में ये बैठ गया है, इसलिए वो कुछ देख करके उधर देखा, जैसे कोई इधर नहीं देख रहा है। एक सेकंड के अंदर में उसकी गोदी में बैठ गए और गोदी में बैठकर बोले जी मैया, और फिर उठ करके फल दो। उनका यह देख करके, भावभंगी देख करके, इतना सुंदर रूप, गले में त्रिवली पड़ी हुई है शंख जैसा, पेट भी, कमर बड़ी छोटी सी, बस्तक्षल बड़ा सा, छोटा सा बच्चा, बड़ा लुभावना, वो देख फिर देखती की देखती रह गई। और कृष्ण कहा जी फल दो फल दो, तो अब उसने कृष्ण के हथेली में कितने फल आएंगे, एक आम अमरूद देने से ही तो भर जाएगा, किंतु वो देती गई, और वो अब ऐसे नहीं लिया, ऐसे लिया, कुछ फल खेले उसमें भर दिए जो कुछ अट सकता था। और वो कृष्ण उसकी तरफ में ऐसे टेढ़ी नजर से देखते हुए और वहां से अपनी मैया की तरफ में चला गया है नित्य करते हुए। वो देखती रह गई, उसका वहीं पर टोकरी, और वो देखती रही, और कृष्ण ने जबरदस्ती उसका हृदय निकाल लिया चोरी करके, शरीर तो वही रहा कि तो उसको हृदय उसने ले लिया, और लेकर के मैया की गोदी में गए, मैया की गोदी में सब फल दे दिया, और जो सुना अरे कहां से लाया तो है ने? और सबको बांट रही है, वो खत्म नहीं हो रहा, सबको एक एक सब फल दिया, इतनी सुंदर मधुर आज तक उन लोगों ने कभी नहीं खाया। और फिर कृष्ण उनकी गोदी में बैठ गए। इधर में कुंजड़ी, वो जो फूल से फ्रूट सेलर थी, उसकी क्या हुई, वो एकदम तन में हो गई, भूल गई सब कुछ, कहां जाना है क्या करना है, कितने मिनट तक बैठी रह गई, आध घंटा एक घंटा हो गया, बस उन्हीं का रूप उनके हृदय में ऐसा समा गया जो फिर नहीं निकला। कोई एक ब्रजवासी नहीं आई उसको, अरे अभी तब तुम गई नहीं, अरे तुम्हारा ये सब पड़ा हुआ है और तुम यहीं पर बैठी हुई, अब शाम होने को आई, अब तो जाओ अपने घर। किसी प्रकार से अपनी टोकरी सिर पर ली और लेकर के अपने मथुरा की तरफ में चली, और जब मथुरा में चली तो यमुना का किनारा आया, दोनों के बीच में गोकुल और मथुरा के बीच में यमुना है, यमुना के किनारे जब आई तो उसकी टोकरी कुछ भारी मालूम पड़ी, तो उसने उतारा और देखा जी इसमें क्या है, देखा फल तो नहीं, फल का फल, हीरे जवाहर पन्ने असंख्य मणियां उसमें भरी पड़ी है, अब मुझे इसकी क्या जरूरत। ऐसा सोच करके हमारे काम की अब चीजें नहीं रही, अब हमको तो वो फल मिल गया है, इसलिए टोकरी लेकर के और यमुना में फेंक दिया। और फिर क्या हुआ किसी को पता नहीं, कहां गई पागल होकर के, शायद हुआ क्या, शरीर नहीं रह गया। कृष्ण ने उसको, मैया जो एक बार कहा है निष्फल तो जाएगा नहीं, इस शरीर को छोड़ करके अपने शुद्ध शरीर से मैया का स्वरूप धारण करके और गोलोक वृंदावन में पहुंची। ये दर्शन का फल है, ये भागवत श्रवण करने का फल ये है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या भागवत सुनना हुआ। यह है प्रोसेस। इस प्रकार से तन्मय होकर के भगवान का नाम हो, तन्मय होकर के भगवान की कथाएं सुने, भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और फिर कभी नहीं निकलते, उसको अंतिम गति दे देते हैं ब्रज की, ब्रज का प्रेम देते हैं। तो दिस इज द रियल फ्रूट ऑफ कृष्ण भक्ति। सो मच पावरफुल दीज हरि कथा। ये हरि कथाएं इतनी पावरफुल हैं, दे मस्ट गो इनसाइड योर हार्ट, दे विल प्योरिफाई योर हार्ट। सो मेनी डिजायर्स अनवांटेड आर देयर, सो मेनी थिंग्स दीज आर नॉट हेल्पफुल फॉर भक्ति, दे आर ऑल हियर। सो दिस पावरफुल हरि कथा विल गो इनसाइड एंड क्लियरिफाई ऑल दीज थिंग्स। ऐसे कथाओं को सुनने में किसकी रुचि नहीं होगी, वो दुर्भाग्य है। तो आज तो शायद 9 बज गया है, अभी मैं चलूंगा और इसके बाद ये हरि कथा सुनाएंगे, इसके बाद में आरती होगी और आप लोग इसके बाद में आए। कल कृष्ण की और भी मधुर मधुर ऐसी शक्तिशाली मैं कुछ कथाओं का वर्णन करूंगा, श्री राम के संबंध में भी वर्णन करूंगा। आप लोग अधिक संख्या में आए तो और अच्छा रहे। गौर प्रेमानंदे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय।